आज 25 जून 2020 का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। मंगलाचरण तब कथामृतम तब जीवनम कवि भरेडी तम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्री मदात भूमि विनंती भूमि दाजा। श्रीमद भागवत 10 कृति में प्रभु तुम्हारी लीला कथा में स्वरूप है। तात्व जीवों के लिए तो ये जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने इसका गुणगान किया है। वह पाप को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधु तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। प्रिय भक्तजन, अब मैं कल के प्रसंग से आपको उससे आगे ले चलती हूँ। अब हमारी बस 28 जनवरी को प्रयागराज से चली और कानपुर में रात्रि भोजन किया। वहाँ से पुनः चलकर रात भर की यात्रा के पश्चात 29 जनवरी की प्रातः हम दिल्ली पहुँच गए। वहाँ हमारी बस सीधे एक भक्त श्री मणिलाल मल्होत्रा सेवा निवृत्त रेंजर, जो यूं तो आया समाजी है और कुल्लू में वो रहते से पहले, अब वो दिल्ली आ गए हैं, उनके घर के सामने जा खड़ी हुई। जब हम बस से उतर कर उनके घर की ओर बढ़े तो वीर स्वामी की खुशी का ठिकाना न था। वह दौड़ कर आए और श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनका हार्दिक स्वागत कर भीतर ले गए। अन्य सब भक्तों का भी यथोचित स्वागत किया। सब ने गर्म जल से स्नान के बाद नाश्ता किया। फिर दिन के समय सब ने वही भोजन किया। श्रीमती मुनीलाल की एक टांग दुर्घटना से टूट गई है, इलाज चल रहा है, परंतु अभी वे स्वयं उठ बैठ नहीं सकती। उनकी बहू सेवा करती है। बड़ी बहू, छोटी बहू तथा अन्य परिवार जन भी बहुत खुश है। श्री महाराज जी ने भारतीय विद्या भवन को टेलीफोन करने को कहा। श्रीमती नरेश वहाँ अध्यापिका है, उनसे टेलीफोन पर बात हुई और नरेश जी लगभग 3 बजे अपने पति के साथ टैगोर गार्डन पहुँच गयी। उनसे मिलकर श्री महाराज गदगद हो गए। तब श्रीमती नरेश हमें अपने घर ले चली। अंधेरा होते होते हमारी बस उनकी माता जी के घर ग्रेटर कैलाश में पहुंची। बस रुकी और श्री महाराज जी 15-20 मिनट श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा तथा श्रीमती सरस्वती मल्होत्रा के घर रुके। तत्पश्चात बस अपर कैलाश आई। 15 सी आनंद भवन के सामने श्रीमती नरेश ने अपने पति श्री नंदलाल दुआ के साथ हमारा स्वागत किया और आदर सत्कार सहित श्री महाराज तथा अन्य भक्तों को अपने निवास स्थान में ले गई। उनकी 2 पुत्रियों नीता तथा दीपा ने प्रणाम किया तो श्री महाराज ने उन्हें गले लगा लिया तथा दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। हम लगभग 1 घंटा यहाँ ठहरे। इस भक्त भगवान हमारी सेवा में कोई कसर न उठा रखी। समय अभाव के कारण बाजार से ही दही बड़े और गर्मा गर्म जलेबियाँ मंगवा कर चाय के साथ सब भक्तों को खिलाई। बार बार मिलने के पश्चात श्री महाराज जी उठे और बस में आ बैठे तथा बस चल पड़ी और हमें याद आने लगा दिल्ली के इन भक्त परिवारों का आदर और स्नेह तथा श्री महाराज जी की भक्त बत्सलता। बस दिल्ली से रात्रि 9 बजे चली थी और उसने दिल्ली से निकलकर हरियाणा में प्रवेश किया। श्री दत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस का जवान कुल्लू में सेवा रखता, पिछले 2-4 वर्षों से मंदिर में आता रहता था तथा इस कन्याकुमारी की यात्रा में हमारे साथ ही था। वह हरियाणा के गांवों का निवासी है। अब उसका निवेदन स्वीकार कर उसकी इच्छा अनुसार श्री महाराज सब भक्तों को उसके गांव ले चले। श्री दत्त के गांव में बस अर्ध रात्रि को पहुंची। गांव में सन्नाटा था। श्री दत्त ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। भक्तों के रात्रि निवास का प्रबंध इधर उधर कर दिया गया। लगभग 2 बजे भक्तगण सो गए। माता उठकर देखा, हम लोग शहर के किनारे दूर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहाँ चारों विस्तृत खेती खेत है। गायें भैंसों घरों के आंगनों में बंदी हुई है। शौच आदि के लिए हम लोग हाथ में जल का लोटा लेकर इधर उधर खेती में चले गए। धूप निकलने पर किसान हल और बैल लेकर खेती की ओर चल पड़े। भक्तों ने भी स्नान आदि किया। श्री दत्त के घर में पिताजी माता जी एक बहन 2 भाई 2 भाभियां हैं, जिनके 2 बच्चे भी हैं। परंतु श्री दत्त की गोद अभी भरी नहीं है, कच्चा मकान है। सब महिलाओं ने सलवार कमीज पहनी है और छोटा छोटा घूंघट भी निकाला है। श्री दत्त ने देसी घी का हलवा बनवा कर घर में नाश्ता कर लिया। मैं पूछा क्या खाएंगे, तो सबने कहा दाल चावल। श्री दत्त जी के घर में चावल भी थे, क्योंकि गाँव में प्रायः लोग चावल नहीं खाते हैं। वो बिना बताए ही शहर से 6 किलोमीटर दूर जाकर के उन्होंने चावल लाए। कहा बहन जी को, सत्या बहन जी को, कि बहन जी हमारे घर में किसी को चावल पकाने नहीं आते हैं, इसलिए मैं चावल तो ले आया हूँ, लेकिन अब पकाने तो आपको ही होंगे। और ये सुनकर भक्त महिलाओं ने ही भोजन पकाया। ये लोग चावल नहीं खाते, इसलिए घर में भी नहीं रखे हुए थे। भोजन परोसने के लिए भी स्त्रियां कुछ झिझक रही है। मैं देख जगदीश तथा अन्य भक्तों ने स्वयं ही भोजन परोसा। सब ने मिलकर बड़े आनंद से भोजन किया। श्री महाराज बार बार श्री दत्त के पिताजी से बात करते हैं और उन्हें भरोसा देते हैं कि उनका पुत्र दत्त गृहस्थी है, इसलिए उसे मंदिर में हरगिज नहीं रखूंगा। कारण ये था कि श्री दत्त ने 1983 में जब 2 मास का अवकाश उसे मिला था, तो वह घर न जाकर मंदिर में रहने लग पड़ा था। श्री दत्त के पिता ने जब देखा कि श्री दत्त इस बार छुट्टियों में गांव में नहीं आया और उसे पता चला कि वो मंदिर में रुक गया है, तो उसके पिता तब गांव से कुल्लू मंदिर में पहुंचे तथा अपने पुत्र दत्त को लाठी लेकर ताड़ना की कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने श्री महाराज जी से भी कहा कि दत्त का विवाह हो चुका है, अतः इसे गृहस्थ में ही रहना चाहिए। तब श्री महाराज की आज्ञा से दत्त अपने पिता के साथ मंदिर से अपने गांव आ गया था। इसी कारण उन्हें भय रहता था कि उनका बेटा कहीं बाबा का शिष्य बन मंदिर में ही ना रह जाए। उनके भय को दूर करने के लिए श्री महाराज जी ने दत्त के पिताजी को बार बार दिलासा और आश्वासन दिया कि उनका पुत्र गृहस्थ में ही रहेगा। इस अभियान में गांव की कुछ स्त्रियां और लड़कियां हमें मिलने आई। मुझे गिरगिर बस्ते पहने हुए देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वह आपस में एक दूसरे को कहने लगी कि तुम भी साधु बन जाओ, तुम भी साधु बन जाओ। इससे भी विचित्र बात उनको क्या लगी कि पूरे गांव के लिए हमारी बस इनके लिए कचंबा थी। हिमाचल पर्यटन विभाग की यह बस वातानुकूलित थी, इसमें वीडियो भी लगा हुआ था। गांव के बच्चे युवक एवं स्त्रियां बार बार इसे देख रहे थे और जब हम विदा हो इसमें चढ़ने लगे तो सबने बस में भीतर आकर उसका भली भांति निरीक्षण किया। उन्होंने सुंदर बस संभवतः पहले कभी नहीं देखी थी और ऐसी कोई बस भला उनके गांव में चली आती भी क्यों। सभी गांव वाले झुमक बनाकर बस के आसपास खड़े हैं। इस तरह बच्चों का तो मन भरता ही नहीं था, वो बार बार बस में चढ़ने और उतरने लगे हुए थे। श्री महाराज जी ने दोनों हाथ जोड़कर सभी को अपना प्यार दिया। आधे दिन में ही प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। ये दृश्य देखकर मुझे भगवान राम के वनवास का स्मरण हो आया कि किस प्रकार प्रभु गांव-गांव में जाकर उन्हें अपना प्रेम और स्नेह देकर सदा के लिए उन्हें स्वजन बना लेते थे। श्री महाराज जी ने भी ये सब अपने जीवन में प्रेम पूर्वक करके दिखाया है। श्री दत्त के गांव और गांव वालों से विदा लेकर बस चल पड़ी और हम सायंकाल चंडीगढ़ पहुंच गए। रात्रि में चंडीगढ़ से रवाना होकर प्रथम फरवरी 1984 की प्रातः महादेवी तीर्थ में आ खड़ी हुई। तीर्थ निवासी श्री विवेक श्री कुमार भालू और कुछ सेवक हमें देख हर्षित हुए। श्री महाराज जी ने सबको प्यार कर किया और फिर विश्राम करने चले गए। मैं भी अपनी छोटी कुटिया में जा विश्राम करने लगी। हमारे साथ जगदीश भाई जी, उनका परिवार और सत्य देवी जी और उनका बेटा राजेंद्र सूद भी मंदिर में उतर गए थे, इसलिए वो भी अपनी अपनी जगह विश्राम कर रहे थे। जब मैं अपनी छोटी कुटिया में विश्राम करने चली गई, तो विवेक जी ने सोचा बहुत सर्दी है, उन्होंने कोयले की अंगीठी जलाकर के मेरे कमरे में रख दी। छोटी कुटिया और उस पर कोयले की अंगीठी और उस पर दरवाजा बंद, तो कोयले की इतनी गैस निकली कि मैं बेसुद हो गई। मुझे चक्कर सा, मेरी आंख खुली, नींद गई तो मुझे लगा कि मेरा सिर भारी है और मुझे चक्कर आ रहा है। मैं उठी और उठते ही दरवाजा साथ ही था, दरवाजे से निकलते ही गिर गई। वहां मेरे दरवाजे के साथ ही, कुटिया के दरवाजे के साथ ही एक पौड़ी जैसी थी, उसी पर मैं गिर गई थी और मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। इतने में कहा श्रीमती लता सूद आई, उसने कहा होगा मम्मी जी क्या हुआ, क्यों यहाँ लेटे हैं? ये सुनकर सत्या देवी जी आई, सभी यात्री और भी भक्त लोग आ गए कि मम्मी जी को क्या हो गया है। प्रेम महाराज जी ने भी सुना तो वो भी आ गए और वह जोर जोर से विलाप करने लगे, मम्मी जी अगर आप चली गई तो बाबा भी अभी अभी निकल जाएगा। बस इस तरह से उन भक्त महिलाओं ने बताया कि महाराज जी का विलाप देखा नहीं जाता था, सुना नहीं जाता था। इतने में ही धीरे धीरे हवा लगने से मेरे कानों में महाराज जी की आवाज सुनाई दी और मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं एक सीढ़ी पर लेटी हुई हूँ और महाराज जी मेरे पास बैठे विलाप कर रहे हैं और सभी भक्त भी वहाँ बड़े दुखी है खड़े है। जब मुझे आंखें खोले हुए देखा तो सभी को चैन आई और सब ने भगवान का शुक्र किया। फिर पूछा क्या हुआ था तो मैंने सब बताया। फिर पता चला कि विवेक जी ने जो अंगीठी रखी है उसमें अभी तक धुआं है। फिर विवेक जी ने वो अंगीठी बाहर निकाली। तो इस तरह से कन्याकुमारी से आते ही एक ऐसी घटना घटी जो कि भूले नहीं भुलाई जाती, लेकिन इसमें मुझे और मेरे सहयोगियों को साथियों को श्री महाराज जी का वो प्रेम भरा विलाप देख कर उनका सुन करके इतना अनुभव हुआ कि महाराज जी का प्यार कितना आत्मा का प्यार है, कितना अनोखा प्यार है जो कि आजकल बहुत कम लोगों में मिलता है। कुल्लू से कन्याकुमारी की यात्रा संपूर्ण हुई, साथ ही श्री महाराज जी का वह शुद्ध संकल्प भी जो उन्होंने उसमें किया था जब दिसंबर 1974 में नए परिवार सरकारी नौकरी संसारिक सुख भैरव को तीन मत त्याग कर श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार उनके चरणों में इस तीर्थ स्थल में बिल्कुल अकेली आ गई थी। श्री महाराज जी ने मुझे तीर्थ स्थल के आगमन के कुछ दिन बाद एक दिन बड़े प्यार एवं सहज भाव से कहा था, माँ आप मेरे लिए तीर्थ के लिए तथा समाज के लिए बाबा की इच्छा अनुसार आ गई है, लेकिन आपकी कन्याकुमारी की यात्रा बाबा अवश्य कराएगा। सन 1978 से 1974 तक मैं तीर्थ स्थल में आवागम करती थी, प्रतिदिन सुबह आती थी, सांय भी आती थी और समर्पण पूर्ण रूप मैंने मंदिर में और बाबा जी के श्री चरणों में किया हुआ था। तो बाबा जी ने एक दिन पूछा था, माँ आपकी क्या इच्छा है? तब मैंने सरलता पूर्वक उत्तर दिया था, स्वामी जी मुझे कन्याकुमारी देखने की इच्छा है। बस उसी दिन से श्री महाराज जी ने यह संकल्प कर लिया था कि माँ को अवश्य एक दिन कन्याकुमारी अवश्य दिखानी है। 1974 से 1984 के 10 वर्षों में तीर्थ स्थल के कठिनतम काल के अंत में श्री महाराज जी ने अपनी इच्छा को पूर्ण किया और मुझे भी अपनी भारत माँ के तथा अपने संपूर्ण देश के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अब मुझे और कोई यात्रा करने की आवश्यकता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। अब इसलिए मैं श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार मंदिर के कार्य में जुट गई। श्री महाराज जी भी इस लंबी यात्रा से थक गए थे, उनका शरीर अब विश्राम चाहता था, इसलिए अधिकतर समय वो अपनी समाधि में ही रहते थे। इन्हीं भक्तों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गीता माँ जय माता दी।